वतन की आग बाजार में मिलने वाले खिलौनों से बुझानी पड़ती है। मेरा पति पिछले 3 साल से बाहर है और वह पूरे साल में सिर्फ एक बार घर आते हैं। मुझे लगा शायद जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा, लेकिन मेरी तकदीर में कुछ और लिखा था। मैं अक्सर घर में अकेली ही रहती हूँ, इसीलिए कई बार नहाने के बाद मैं सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में ही पूरा दिन निकाल देती हूँ। एक दिन अचानक ही दोपहर में मेरे घर की घंटी बजी। उस दिन मैं सफेद कलर की ब्लाउज और ब्लैक कलर की पेटीकोट पहनी थी। बहुत अच्छी लगती हूँ मैं उसमें। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि मेरे सामने 6 फुट का एक लंबा और चौड़ी छाती वाला एक खूबसूरत इंसान सामने खड़ा था, जिसे देखकर मेरे पूरे बदन में चींटियां रेंगने लगी। पता नहीं सकती कि क्या महसूस कर रही थी। उसने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, मेरा नाम राजेश है और मैं आपके पड़ोस में नया किराएदार आया हूँ। थोड़ी चीनी मिलेगी? वो इतना रोबीला था कि 1 मिनट के लिए मैं काफी कुछ भूल गई थी। मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में उसके सामने खड़ी हूँ। अचानक ही मुझे महसूस हुआ उसकी नजर मेरी छाती की गोलाइयों पर जा रही है। मैं तुरंत उसका कटोरा लेकर अंदर चली गई। अंदर जाकर मैंने टॉवल से अपनी छाती को ढका और उसे चीनी लाकर दे दी। थैंक यू भाभी, उसने कहा। उसकी आंखों में भी मुझे वही प्यास दिखी जो बरसों से मेरी आंखों में समाई हुई थी। उस रात मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और राजेश के विशाल शरीर को सोच सोच कर अपने पूरे बदन को रगड़ती रही। मैंने डिसाइड किया कि मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। कुछ ही दिन बाद रोज की तरह जैसे ही मैं नहाकर निकली, दरवाजे पर घंटी बजी। उस दिन मैंने ब्लैक कलर की कट वाली ब्लाउज पहनी हुई थी, जिसमें मेरी छाती की उभार काफी साफ नजर आ रही थी। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि राजेश बनियान और पैंट पहने हुए था। मैं उसे देखने लगी। मेरी पूछने पर उसने बताया कि उसके पैंट का बटन टूट गया है और उसे सुई धागा चाहिए। मेरे लिए इससे अच्छा मौका कुछ नहीं था। मैंने राजेश को कहा, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं अभी सिल देती हूँ। राजेश ने थोड़ी और नानुकुर की, लेकिन फिर वो राजी हो गया। मैंने राजेश को सोफे पर बैठने को कहा और खुद सुई धागा लेकर उसकी दोनों टांगों के बीच में बैठ गई। मेरे नीचे बैठने की वजह से राजेश को मेरी छाती की गहराई बेचैन करने लगी। उसकी नज़र बार बार मेरे सीने के आसपास मंडरा रही थी। बटन सिलते सिलते मेरा एक हाथ उसकी जिप के पास पहुंच गया और अचानक ही मुझे किसी नोकीलेदार चीज का एहसास हुआ जो बार बार झटके मार रहा था। मुझसे बिल्कुल रहा न गया और मैंने अपना मुंह उस नोकीलेदार चीज के पास लगा दिया और अब पहले से भी ज्यादा स्पीड से वो झटके मार रहा था। राजेश और मैं कंट्रोल खो चुके थे। राजेश ने मेरा सिर पकड़कर अपनी दोनों टांगों के बीच डालकर जोर से दबाने लगा। मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। मैं उसके अंगों को अपने दांतों से धीरे धीरे काटने लगी। कुछ ही देर में मुझे उस नोकीलेपन का एहसास अपने होठों पे होने लगा और फिर उसे मैंने अपने गले की गहराइयों में उतार लिया। राजेश पूरी तरह तड़पने लगा। उसने मेरा सिर इतनी जोर से दबा कर रखा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। काफ़ी देर तक मेरा सिर दबाने के बाद अचानक ही राजेश ने अपने नितंबों कूलों को 3 बार जोर से आगे की तरफ धकेला और ठंडा हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा गले मेरे गले में किसी ने गर्म घी डाल दिया हो। राजेश बिल्कुल ढीला पड़ चुका था और सोफे पर अधमरा अधमरे की तरह लेट गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे परसों बाद मेरी जवानी एक बार फिर से खिल गई हो। मैं पागल हो चुकी थी, मेरी तड़पती जवानी की और भी रसीली कहानियां सुनने के लिए ऊपर की तरफ दबाए। Downloaded from WhatsappMasty.com